أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يهنك قولهم إن العزة لله جميعا وهو السميع العليم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم یہ پانچ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان میں سے پہلی تین کا تعلق سورہ یونس سے ہے اور آخری دو سورہ محمد سے اخذ کی گئی ہیں لیکن یہ آیات ایک ہی مضمون کو بیان فرما رہی ہیں اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال رہی ہیں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ میرے بندے جو خوف اور غم سے آزاد کیے جاتے ہیں ان کی بے خوفی اور بے غمی کی وجہ کیا ہے वो कौन से मुझे बात हैं जिनके नतीजे में वो बेखौफ और बेगम हो जाते हैं। उनके दलाइल दिए गए उनकी बेखौफी पर। अव्वल दलील ये कि वो अल्लाह के दोस्त होते हैं और अल्लाह उनका दोस्त होता है, और हर बेखौफी और हर बेगमी जो इस बिना पर पैदा होती है कि बेखौफ और बेगम इंसान अल्लाह का दोस्त है और अल्लाह उसका दोस्त है, वही दरअसल हकीकी बेखौफी और हकीकी बेगमी है। दूसरे, शहादत के तौर पर खुदा ताला तारीख इंसानी को पेश फरमाता है और फरमाता है कि तारीख इंसानी इस बात पर गवाह है कि ऐसे लोग जो खुदा के दोस्त हो जाते हैं, जिनका खुदा दोस्त हो जाता है, उनको कभी कोई खौफ और कोई हुज़्न नहीं सताता है। गोया उनकी जिंदगी में खौफ और हुज़्न का कोई अमल ही नहीं। अमरे वाक्या यह है कि जब हम डराने वालों और उन लोगों के हालात का मुतालिया करते हैं जो बड़ी जुर्रत और बेबाकी से उन डराने वालों की धमकियों को रद्द कर देते हैं, तो तीन किस्म के ग्रोह हमें नजर आते हैं। अव्वल वो जो गीदड़ भभकियां देने वाले होते हैं, खाम खा बगैर हकीकत के डराने वाले, उनमें ताकत ही कोई नहीं होती कि किसी को गदन पहुंचा सकें, और उनके मुकाबले पर बेखौफी दिखाने वाले भी ऐसे ही होते हैं। दिल के खा छोटे भी हों, उनको पता होता है कि मुंह की बातें हैं, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना, खाली डरावे हैं, धमकियां हैं। जिस शिद्दत के साथ ये शख्स डरावे दे रहा है, उसी शिद्दत से आगे से गालियां दो और कहो जो मर्जी करना कर लो, जो बिगाड़ना बिगाड़ लो। ऐसे डराने वाले भी गैर हकीकी होते हैं और ना डरने वाले भी गैर हकीकी, यानी दोनों के पस मंजर में कोई सच्चाई नहीं होती। एक दूसरा ग्रोह उन लोगों का होता है जिनके खौफ तो हकीकी होते हैं, लेकिन वो अपनी नासमझी, कम इल्मी और नाअकबत अंदेशी के नतीजे में जुर्रत के मुजाहरे करते हैं और नहीं जानते कि उनका अंजाम क्या होगा। मसलन, जैसे कि उर्दू में कहावत मशहूर है, बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता है और खतरात का इनकार कर देता है। वो ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होता कि कोई खतरा दरपेश है। बस ऐसी बेखौफी दरअसल जहालत के नतीजे में पैदा होती है और इसका अंजाम भी हलाकत है। अल्लाह के मुकाबले पर निकलने वाले और अल्लाह के अजाब से अमन में आने वालों का इससे भी बदतर हाल होता है। वो जो ये समझते हैं कि ये महज धमकियां हैं और खुदा पकड़ नहीं सकता, वो जो ये गुमान कर लेते हैं कि हम आम इंसानों की तरह अमन की जिंदगी गुजारेंगे और जो जो भी चाहें बेबाकी करें, अल्लाह ताला के अजाब और उसकी पकड़ से बच जाएंगे, उनका हाल उन कबूतरों से भी बदतर होता है जो बिल्ली से आंखें बंद करते हैं। एक तीसरी किस्म के डराने वाले हैं और एक तीसरी किस्म के ना डरने वाले। वो डराने वाले भी हकीकी होते हैं, अपने तमाम बद इरादों को अमल का जामा पहनाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद और तैयार होते हैं, और जहां तक उनकी पेश जाती है वो सारे बद इरादे पूरे कर लेते हैं जो उनके दिल में गैज़ो गज़ब की सूरत में खौल रहे होते हैं। और उनके मुकाबले पर बाज़ बेखौफ और बेबाक लोग हैं जो उनकी आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि तुम जो चाहते हो कर लो, जो कर गुजर सकते हो कर गुजरो, हम तुमसे कोई खौफ नहीं खाएंगे। इन लोगों में से एक गुरु वो है जिनकी दलेरी, जिनकी बहादुरी, जिनकी जुर्रत खालिसतन इस वजह से होती है कि वो अल्लाह के दोस्त होते हैं और अल्लाह को अपना दोस्त समझते हैं। और उन्हीं का जिक्र इस आयत में किया गया है, अला इन्ना औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इस आयत का यह मतलब नहीं है कि खौफ के हालात पैदा नहीं होते उन पर और हुज़्न के सबब नहीं पैदा होते। दरअसल इस आयत के अंदर ही यह मजमून खोल दिया गया है कि अमरे वाकया तो यह होगा कि हकीकत में खौफ के सामान होंगे और बज़ाहिर डरने की वजूहात होंगी और ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे जिनके नतीजे में हुज़्न होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जो अल्लाह के दोस्त हों या जिनका अल्लाह दोस्त हो वो गम और खौफ के असर से बाला रहते हैं। इसका फलसफा क्या है ये बयान फरमाया गया है। सबसे पहले तो अगर आप खौफ का तज़िया करें तो खौफ एक मुस्तकबिल की चीज है। ऐसे इहतमालात जो अभी वाकयात की दुनिया में ना उतरे हों, उन्होंने हकीकत के लिबास ना ओढ़े हों, वो खतरात जो अभी मौल्लक हों फिजा में, जो सर पर तलवारों की तरह लटक रहे हों, उनका ताल्लुक मुस्तकबिल से है। जब भी वो हकीकत बनते हैं वो उस वजह में तब्दील हो जाते हैं जिसके नतीजे में हुज़्न पैदा होता है, वो उस नुकसान में तब्दील हो जाते हैं जिनके नतीजे में हुज़्न पैदा होता है। बस खौफ का ताल्लुक मुस्तकबिल से है, आइंदा ऐसे वाकयात रूनुमा होने का खतरा हो जिनके नतीजे में इंसान को नुकसान पहुंचे, और हुज़्न का ताल्लुक माजी से है। इसके माजी में एक ऐसा खौफ होता है जो वाकयातन हकीकत इख्तियार कर चुका हो, बस वो खौफ जो अभी हकीकत इख्तियार ना कर चुका हो वो हुज़्न में तब्दील नहीं हो सकता जब तक कि वो हकीकत ना बन जाए। हुज़्न का ताल्लुक लाजमन माजी के वाकयात से है, कुछ खौफ हकीकी साबित हुए वो नुकसान का मुझे बन गए वाकयातन, और उनके नतीजे में जो नुकसान पहुंचा उससे हुज़्न पैदा होता है। तो अगर खुदा ताला का मंशा यह होता कि खौफ के हालात ही पैदा नहीं होंगे तो हुज़्न के जिक्र की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसा खौफ जो ख्याली और फर्जी हो, जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक ही ना हो, वो कभी भी हुज़्न पैदा नहीं कर सकता, वो खौफ ही रहेगा अगर रहेगा, या अमन में खुद ब खुद तब्दील हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने जब ये फरमाया कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो हुज़्न ने बताया कि कुछ खौफ लाजमन हुज़्न की वजह पैदा कर देंगे, उसके बावजूद वो हुज़्न महसूस नहीं करेंगे। इसका फलसफा समझना हो तो इसका राज औलियाउल्लाह के लफ्ज में है। दोस्ती और मोहब्बत और इश्क, इसमें आप इस हकीकत को पाकर समझ सकते हैं कि खुदा तआला क्या बयान फरमा रहा है। दोस्ती के दो पहलू होते हैं, एक दोस्त की ये तमन्ना और ये ख्वाहिश, ये बेकरारी कि मैं सब कुछ अपने दोस्त पर कुर्बान कर दूं, और जब वो कुर्बान करता है तो गम महसूस नहीं करता बल्कि लज्जत पाता है। जब अपने दोस्त की खातर वाकयातन अपनी किसी प्यारी चीज से जुदा होता है तो वावेला नहीं करता बल्कि एक अजीब रूहानी लज्जत महसूस करता है कि मैंने किसी मकसद की खातिर यह चीज कुर्बान की है और वो मकसद मुझे ज्यादा प्यारा है इस चीज के मुकाबले पर। और बाद दफा वो तमन्ना करता है कि मैं अपनी जान भी दोस्त पर निछावर कर दूं। चुनाचे कुरान करीम में ऐसे औलियाउल्लाह का जिक्र बकसरत मिलता है जो खुदा की खातिर अपने अमवाल और जान कुर्बान करने के लिए ना सिर्फ तैयार रहते थे बल्कि तमन्नाएं पाला करते थे दिलों में। चुनाचे कुरान करीम फरमाता है मिनहुम मन कज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर, कि एक खौफ के बाद दूसरे खौफ के हालात पैदा होते चले जा रहे हैं। हर खौफ को जब हम अमन से बदलते हैं तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी तमन्नाएं पूरी हो चुकी होती हैं मेरी राह में अपने जान और माल फिदा करने की, और कुछ की हसरतें बाकी रह जाती हैं। वो इस बात पर खुश नहीं होते कि खौफ के हालात बदल चुके हैं, हमारी जानें बच गई और हमारे अमवाल बच गए, बल्कि ऐसे फिदाई, ऐसे आशिक खुदा की राह में ऐसे पागल हो चुके होते हैं कि वो हसरतें पालते रहते हैं दिल में कि बहुत अच्छा आइंदा सही, अब नहीं तो आइंदा सही। चुनाचे तारीख इस्लाम से साबित है कि जंगे बदर में ना शामिल हो सकने वालों में से कुछ ऐसे थे जो दुआओं की दरख्वास्तें किया करते थे, दिन रात ये जिक्र किया करते थे कि वाह हसरत हम शामिल नहीं हुए, अगली दफा जब होगा तो फिर हम देखेंगे, फिर हम हसरतें निकालेंगे। और फिर वाकयतन ऐसा हुआ कि उनके जिस्मों के टुकड़े उड़ा दिए गए, वो पहचाने नहीं जाते थे, ऐसे ऐसे जख्म उन्होंने खाए खुदा की राह में। ऐसे लोगों के मुतलिक ये कहना कि उनको कोई खौफ डरा सकता है, वो किसी हुजन का शिकार हो सकते हैं, बहुत ही बड़ा पागलपन है। बस खुदा ताला इस हकीकत से इनकार नहीं फरमा रहा कि ये लोग खौफ के हालात में से नहीं गुजरेंगे या इनके लिए हुजन के हालात नहीं पैदा होंगे। ये फरमाता है कि दुनिया की नजर में जिसको खौफ कहा जाता है, दुनिया की नजर में जिसको हुजन समझा जाता है, उन दोनों चीजों से ये मेरे बंदे पाक और बाला हैं। खौफ के हाथ इन तक पहुंच नहीं सकते, उठेंगे जरूर लेकिन कोहता रह जाएंगे और उन तक इनको दस्तरस नहीं होगी। हुजन इनके दिलों पर कब्जा नहीं जमा सकेगा क्योंकि इनके गमों में इनकी लज्जतें हैं और वो गम जो लज्जत पैदा करे वो गम दुनिया की इस्तिलाह में या किसी भी इस्तिलाह में नहीं कहला सकता। गम का लज्जत से क्या ताल्लुक, लेकिन आशिक के गम का लज्जत से ताल्लुक होता है। चुनांचे शायरी में आपको ऐसे गम मिलते हैं जिनकी लज्जतों का बे इंतहा जिक्र मिलता है शायर की जुबान से, कहते हैं काश हमें और भी ऐसे गम मिले। तू मशके नाज कर खूने दो आलम मेरी गर्दन पर, तू गम पहुंचाता चला जा, चिरके लगाता चला जा। हम वो शाख तो ऐसे हैं कि हर दुख पर, हर चिरके पर जो तेरी तरफ से लगाया जाता है हम लज्जत महसूस करते हैं। ये आशिक की दुनिया है और खुदा ताला इस इश्क की दुनिया का जिक्र फरमा रहा है जब फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून। बड़े बेवकूफ हो तुम दुनिया वालों, अल्लाह से मोहब्बत करने वालों को डराते हो। वो जो खुदा के इश्क में सब सौदे कर चुके हैं, सब कुछ बेच बैठे हैं, उनको डरा रहे हो कि तुम्हारे अहद व पैमान के पूरा करने के हम सम्मान करेंगे। मिनहुम मन कज़ा नाबहु, तुम पहले भी देख चुके हो ये हालात कि जब ऐसे हालात पैदा हुए तो उन्होंने बड़ी जरूरत और हौसलों के साथ खुदा की राह में कुर्बानियां पेश की थी और उन्हीं से बचे हुए ये मुंतजर बैठे हुए हैं। इन पर तुम्हारे खौफ की आवाज क्या असर कर सकती है? वो खायब खासिर होकर तुम्हारी तरफ वापस लौट जाएगी और मेरे बंदों पर, मेरे महबूब बंदों पर, मुझसे मोहब्बत करने वालों पर उनका कोई असर नहीं होगा। एक वलायत का यह पहलू है, यानी इश्क का पहलू। आशिक की नजर से जब वलायत को देखा जाता है तो इस तरह खौफ और हुज़्न को दूर किया जाता है। एक वलायत का दूसरा पहलू है, वो महबूब जब आशिक बनता है अपने आशिक का और उसके लिए बेकरार होता है और उसके लिए बेचैन होता है तो वह हरगिज पसंद नहीं करता कि दुश्मन और जालिम लोग उसके महबूब को मिटा डालें। वो कुछ आजमाइश में तो जरूर डालता है अपने प्यार के इजहार के तौर पर, मौका देता है कि वो भी देखें अपनी आंखों के सामने कि मेरी राह में, मेरी मोहब्बत में फिदा होना किसको कहते हैं। मगर ये आशिकी की रमजें हैं सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं। हरगिज पसंद नहीं करता वो महबूब कि मेरी खातिर मेरा आशिक गैरों के हाथों हलाक किया जाए। वो हर गैरत करने वाले से ज्यादा उसकी गैरत दिखाता है और उस मौके पर जब यह आवाज बुलंद होती है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून, तो इसमें जमाल की बजाय एक अजीब जलाल पैदा हो जाता है, एक ऐसी हैबत पैदा हो जाती है कि किसी और आवाज में कभी ऐसी हैबत पैदा नहीं होती। देखेंगे जब खुदा अपने बंदों के लिए ऐलान करता है, अपने महबूब बंदों के लिए, अपने आशिकों के लिए, ला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून, मैं इनका साथी हूं, ये मेरे दोस्त हैं, तुम कौन होते हो इन पर हाथ उठाने वाले, तुम कौन होते हो इनकी हलाकत का दावा करने वाले। चुनांचे इस मजमून को बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है मेरे दोस्तों के साथ तुम्हारा सुलूक इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, भूल जाओ इन ख्यालात को, वहम है ये तुम्हारे दिलों के, इनको निकाल डालो। लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा असर दुनिया की चीजों पर हो सकता था, तुम यही सोच सकते हो, इससे ज्यादा तुम्हारी पहुंच नहीं है, तुम्हारी इस्तेआत नहीं है कि हम इनसे दुनिया छीन लें, आखिरत पे तो तुम्हारा कब्जा ही कोई नहीं। फरमाता है हम दुनिया भी नहीं छीनने देंगे तुम्हें। लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया, हम बशारत देते हैं डराए जाने वाले बंदों को कि दुनिया भी तुम्हारी होगी और आखिरत भी तुम्हारी होगी। यहां भी तुम्हारे लिए बशारते हैं और उस दुनिया में भी तुम्हारे लिए बशारते हैं और कोई नहीं जो तुम्हारा बाल भी बीका कर सके, क्योंकि तुम मेरे बंदे हो और मेरे प्यारे हो और मेरे औली तुम्हारे बेशुमार हो रहे हो।
لا تبدیل علی کلمات اللہ. فرماتا یہ نہ سمجھنا کہ یہ واقعہ شاید ایک دفعہ ہوا یا دو دفعہ ہوا یا چار دفعہ ہوا اور پھر نہیں ہو سکتا. یہ خدا کا غیر مبدل قول ہے, ایک ایسی تقدیر ہے جو کبھی تبدیل ہوتی ہوئی تم نہیں دیکھو گے. جتنی دفعہ تم میرے پیاروں کو دھمکیاں دو گے اتنی بار میں آسمان سے ان کو خوشخبریاں دوں گا. تمہاری دھمکیاں ہر بار جھوٹی نکلیں گی اور میری خوشخبریاں ہر بار سچی ثابت ہوں گی. لا تبدیل علی کلمات اللہ, اللہ کے کلمات میں تم کوئی تبدیلی ہوتے ہوئے نہیں پاؤ گے. ذالک ھو الفوز العظیم, اس کو کہتے ہیں عظیم کامیابی. تم کن کامیابیوں کی باتیں کر رہے ہو؟ کامیابی تو وہ ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے نصیب ہو, جو آسمان سے اترے, جو دنیا بھی سنوار جائے اور آخرت بھی سنوار جائے. وہ کون سی کامیابی ہے جو دنیا بھی بگاڑ جاتی ہے اور آخرت کو بھی بگاڑ جاتی ہے؟ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے خدا فرماتا ہے, ولا یحزنک قولہم ان العزت للہ جمیعا. ظاہری نقصان یا ظاہری ذلتیں پہنچانا تو الگ بات ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو ان کے دکھ دینے والے قول کا غم بھی نہ کر, ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں اور ان کے مقدر میں ساری ذلتیں لکھی جائیں گی, اس لیے ان کی زبانی باتوں پہ بھی کوئی پرواہ نہ کر, کوئی غم محسوس نہ کر. ہاں مجھے پکار, مجھے بلا, میرے لیے اٹھ, میرے حضور دعائیں کر. ہو سمیع العلیم, فرمایا اللہ بہت ہی سننے والا اور بہت ہی جاننے والا ہے. اگر ایسی باتیں اس تک پہنچائی جائیں گریہ اوزاری کے ذریعے جن کا بندے کو علم ہے, تو وہ تو اس کو پہنچ ہی جاتی ہیں, وہ سمیع ہے. لیکن ایسے مکر اور ایسے فریب جو خفیہ سازشوں کی حیثیت رکھتے ہیں, جن کا بے معصوم بندوں کو علم ہی کوئی نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر کیا فریب کاریاں کی جا رہی ہیں اور چھپ چھپ کر کیا سازشیں تیار کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس بات کا انتظار نہیں کروں گا کہ میرے بندے مجھے بتائیں کہ یہ ہو رہا ہے, میں جانتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. بس جس کا دوست سمیع و علیم ہو اس کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اس کو پکارو گے تو وہ سنے گا اور جواب دے گا, اور لاعلمی میں رہو گے تو وہ تمہاری خاطر جان رہا ہوگا, تم سوئے ہوگے تو وہ تمہارے لیے جاگ رہا ہوگا اور دیکھ رہا ہوگا کہ تمہارے لیے کیا کیا سازشیں تیار کی جا رہی ہیں. یہ ہیں وہ خدا کے بندے جن کے متعلق فرمایا اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. عاشق کے پہلو سے دیکھیں تب بھی یہ بہت ہی پیاری اور عظیم شان آیت ہے, معشوق کے پہلو سے دیکھیں تب بھی یہ ایک بہت ہی پیاری اور عظیم شان آیت ہے. جن لوگوں کے مقدر میں خدا کا یہ قول لکھا گیا ہو ان کو کون سا خوف ڈرا سکتا ہے اور کون سا غم ان کے دلوں پر قابض ہو سکتا ہے؟ دوسری گواہی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے تاریخ کی گواہی پیش کرتا ہے. یہ تو مومنوں سے باتیں ہیں اللہ کی, اس کے پیار کا اظہار ہے, لیکن دنیا دار بعض دفعہ ان باتوں کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہمیں کیا پتا اس دفعہ کیا ہونے والا ہے اور تمہیں کیا پتا اس دفعہ کیا ہونے والا ہے, ہم تو بڑے بڑے ارادے لے کر اٹھے ہیں اور بہت تیاریاں کی ہیں, تمہاری حیثیت ہمارے سامنے کوئی نہیں. پہلی قوموں نے فلاں غلطی کی تھی جو کامیاب نہیں ہوئے, فلاں غلطی کی تھی جو کامیاب نہیں ہوئے ہوں گے, لیکن ہماری پکڑ سے تم نہیں بچ سکتے. بار بار دشمن یہی تالی لے کر اٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا کے قول کا تمہیں اعتبار نہیں ہے, خدا کے فرمان کی کوئی پرواہ تمہارے دلوں میں نہیں, مگر تاریخ عالم کو تم کس طرح جھٹلاؤ گے؟ ایک بھی استثناء تم تاریخ عالم سے نہیں دکھا سکتے. خدا کے نام پر جن لوگوں کو مارنے کی کوشش کی گئی وہ کبھی ہلاک نہیں ہوئے, اور خدا کے نام پر جو لوگ مرنے کے لیے تیار ہوئے ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا کی گئی اور موت ان کے نصیب میں نہیں لکھی گئی. یہ وہ تقدیر ہے جس کا ذکر خدا تعالیٰ فرما رہا ہے. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. ہماری باتوں کو نہیں مانتے تو دنیا کو تو دیکھیں, سیر تو کریں ذرا اس زمین کی, معلوم تو کریں ان قوموں کے حالات جو مٹا دی گئیں اور تہ زمین سلا دی گئیں, وہ جن کے افسانے ملتے ہیں جن کی حقیقت کا کوئی نشان نظر نہیں آتا. فرمایا دنیا میں پھرو اور ان قوموں کے حالات کو دیکھو جو تم سے پہلے تھے اور تمہاری جیسی حرکتیں کیا کرتے تھے اور تمہاری طرح کے ہی دعوے کیا کرتے تھے, تمہاری ہی طرح ان لوگوں کے پیچھے پڑ جایا کرتے تھے جن کا کوئی جرم نہیں تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے. محض خدا کی خاطر دشمنیاں مول لی انہوں نے और खुदा के नाम पर तुम दुश्मनियों के लिए बेबाक हो गए, उन कौमों की तारीफ का मुतालिया करो। दम्मर अल्लाह अलैहिम, खुदा ताला ने उनको नेस्त तो नाबूद कर दिया, उनके निशान तक मिटा दिए दुनिया से, सिवाय उन इबरत के निशानात के जो आइंदा कौमों के लिए महफूज रखे गए हैं। फरमाया लिल काफिरीन अम्सालुहा, ए मोहम्मद यह ऐलान कर दे कि आज के काफिरों के लिए भी वही बातें होंगी जो पहले काफिरों के लिए हुआ करती थी। तो नए दस्तूर जारी नहीं होंगे, जिस तरह पहले काफिरों का हाल था, पहले जालिमों के साथ खुदा की तकदीर ने सलूक किए, आज के काफिरों और आज के जालिमों से भी खुदा की तकदीर वही सलूक करेगी। जितनी दफा तुम इन बातों को दोहराओगे उतनी दफा हम इन बातों को दोहराते चले जाएंगे। और नतीजा क्या निकाला? नतीजा वही निकाला कि ये औलियाउल्लाह हैं। फरमाया तुम उस तरह नहीं मानते तो तारीख आलम से सबक देखो, सबक ढूंढो और तारीख की गवाही पर यकीन करो, सवाए इस नतीजे के तुम भी ये नतीजा नहीं निकाल सकोगे, कोई भी नतीजा नहीं निकाल सकोगे कि ये औलियाउल्लाह हैं, इसके सिवा कोई शक्ल नहीं नजर आती इनके बचने की। जितनी दफा भी खुदा के नाम पर, खुदा के नाम लेवाओं पर जुल्म किए गए, बिला इस्तिस्ना सारे सित आलम पर एक ही तारीख आपको दोहराई जाती हुई नजर आएगी, और वो तारीख ये है कि वो मजलूम नहीं मिटे, जालिम मिटा दिए गए। जिनकी गर्दनें काटी जा रही थी उनकी गर्दनों को बरकत दी गई, जिनके माल लूटे जा रहे थे उनके अमवाल को बरकत दी गई, जिनके नफूस कम किए जा रहे थे उनके नफूस को बरकत दी गई, जिनके घर जलाए जा रहे थे उनके घरों को बरकत दी गई, जिनके बच्चे कत्ल किए जा रहे थे उनके बच्चों को बरकत दी गई। कोई एक पहलू भी ऐसा नहीं जिस पहलू को अख्तियार करके दुश्मन ने उनको गजन पहुंचाने की कोशिश की हो और उस पहलू से अल्लाह ताला ने उनको गैर मामूली बरकत अता फरमाई। यह है गैर मुबद्दल तारीख जिसको खुदा ताला पेश फरमाता है। फरमाता है फिर क्या नतीजा निकालोगे इसका? ये लोग क्यों नहीं मिटाए गए? ताकतें तो तुम्हारे पास थी, अक्सरियत तो तुम्हारे पास थी, हुकूमतें तुम्हारे पास थी, दुनिया के हथियार तुम्हारे पास थे, आखिर क्या वजह है क्यों ये मिटाए नहीं गए? सवाए इसके अकल नतीजा नहीं निकालती कि यकीनन अल्लाह वाले हैं और अल्लाह इनके साथ था। फरमाया ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनु वअन्नल काफिरीन ला मौला लहुम। फरमाया एक नतीजा नहीं, दो नतीजे निकालते हैं हम इसे। हमने तो तारीख के अबवाब खोल के तुम्हारे सामने दिखा दिए। सवाए इसके कि अल्लाह के वली हों, ये लोग बचाए जा नहीं सकते, बज़ाहिर हालात इनके बचने की सूरत ही कोई नहीं सवाए इसके कि अल्लाह इनका वली हो। फरमाया सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और भी नतीजा तारीख निकालती है कि तुम्हारा कोई वली नहीं है, जिनको तुम अपना वली समझ रहे हो उनकी विलायतें तोड़ दी जाएंगी, उनके हाथ छल कर दिए जाएंगे और कोई खुदा के मुकाबले पर तुम्हारी मदद को नहीं आ सकेगा। कितना अजीम शान, कितना हैबतनाक नतीजा है तारीख ने बार बार दुनिया के सामने असबाब की सूरत में दोहराया, लेकिन बेवकूफ और आंखों के अंधे इन नतीज को नहीं देख सकते। बस जमात अहमदिया के लिए खुशखबरी है, उनके लिए भी खुशखबरी है जिनकी उमंगें पूरी की जाएंगी और जिनकी इल्तजाओं को इस रंग में कबूल किया जाएगा कि अल्लाह उनकी पेश होने वाली कुर्बानियों को कबूल फरमा लेगा, उनकी पेश की जाने वाली जानों को कबूल फरमाएगा, उनके पेश किए हुए घरों को कबूल फरमाएगा, उनके पेश किए हुए उम्र भर के असासों को कबूल फरमाएगा। लहुमुल बुशरा, उनके लिए भी खुशखबरी है। मिनहुम मन कदा नहबहुम, उन लोगों में शामिल हो गए जिन्होंने अपनी उमंगों को पूरा कर लिया, और उनके लिए भी खुशखबरी है जिनके लिए खुदा की गैरत जोश में आएगी और दुनिया को इस बात की इस्तताअत नहीं होगी कि वो उनको मिटा दें। हर पहलू से जिसमें उनको कमजोर करने की कोशिश की जाएगी वो पहले से ज्यादा बढ़कर ताकतवर होकर निकलेंगे। यानी खुदा अपनी पूरी जलाल का इजहार उनके लिए करेगा, उनके लिए भी खुशखबरी। घाटे का सौदा तो ना इस तरफ है ना उस तरफ है। बस इस मुकाबले के लिए हम तैयार हैं। हम उस कौम में से नहीं है, उन कौमों में से नहीं है जो बुजदिल होती हैं और जो मुकाबले के लिए खड़ी नहीं होती। हम हर चैलेंज का जवाब देंगे और खामोश नहीं बैठेंगे, लेकिन हमारे हथियार और हैं और तुम्हारे हथियार और हैं, तुम्हारी तर्ज कलाम और है और हमारी तर्ज कलाम और है, तुम्हारी लहन मुख्तलिफ है हमारी लहन मुख्तलिफ है, تم اناد کے اور بغض کی آگ جلانے کے لیے نکلو گے, ہم محبت کے آنسوؤں سے اس آگ کو بجھائیں گے. تم دنیا کے تیر چلا کر ہماری چھاتیوں کو برماؤ گے, اور ہم آسمان پر کی طرف دعائیں بھیج کر راتوں کو اٹھ کر گری اوزاری کے ساتھ دعاؤں کے تیر چلائیں گے. یہ لڑائی ضرور لڑی جائے گی. بس اے احمدی, اس رمضان کو فیصلہ کن رمضان بنا دو, اس الہی جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. مگر تمہارے لیے کوئی دنیا کا ہتھیار نہیں ہے. دنیا کے تیروں کا مقابلہ تم نے دعاؤں کے تیروں سے کرنا ہے. یہ لڑائی فیصلہ کن ہوگی, لیکن گلیوں اور بازاروں میں نہیں, سینوں اور میدانوں میں نہیں, بلکہ عبادت گاہوں میں اس لڑائی کا فیصلہ ہونے والا ہے. راتوں کو اٹھ کر اپنے عبادت کے میدانوں کو گرم کرو, اور اس زور سے پیکار کرو کہ آسمان پر عرش کے کنگلے بھی ہلنے لگے. متاع نصر اللہ کا شور بلند کر دو. خدا کے حضور گریہ اور زاری کرتے ہوئے اپنے سینوں کے زخم پیش کرو, اپنے چاک گریبان اپنے رب کو دکھاؤ, اور کہو کہ اے خدا, قوم کے ظلم سے تنگ آ کر میرے پیارے آج شور محشر تیرے کوچے میں مچایا ہم نے. بس اس زور کا شور مچاؤ, اور اس قوت کے ساتھ متاع نصر اللہ کی آواز بلند کرو کہ آسمان سے ابواب رحمت کھلنے لگے, اور ہر بات سے یہ آواز آئے, اللہ ان نصر اللہ قریب, اللہ ان نصر اللہ قریب, اللہ ان نصر اللہ قریب. سنو سنو کہ اللہ کی مدد قریب ہے. اے سننے والوں سنو کہ خدا کی مدد قریب ہے. اے مجھے پکارنے والوں سنو کہ خدا کی مدد قریب ہے, اور وہ پہنچنے والی ہے.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.